विज्ञानुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 144। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, त्रिभुवनतिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं,
वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी।
यह कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, उसकी गाथा 310 को हम देखते हुए पृष्ठ क्रमांक 38 पर हम आए हैं। वहाँ जो प्रश्न है वहाँ से चालू करते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं, आश्रव छे ते जीवती भिन्न छे के अभिन्न छे। देखो यहाँ पर दो अपेक्षा लग सकती है, लेकिन यहाँ जो अपेक्षा है उसका हम पहला विचार करेंगे। यहाँ लिखा है पर्याय अपेक्षा जीवती अभिन्न छे, इसका अर्थ क्या? यहाँ हम आश्रव को केवल राग द्वेष के परिणाम इस तरह सीमित करते हुए पहले समझेंगे। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि राग द्वेष के जो परिणाम है वह उस रूप परिणमन करना, यह जीव का स्वभाव नहीं है। तो पर्याय में विभाव रूप परिणमित होता है, इसलिए यहाँ लिखा है के पर्याय अपेक्षाएं जीवती अभिन्न छे, अने द्रव्य अपेक्षाएं भिन्न छे, क्योंकि द्रव्य तो सुख स्वरूप है और राग द्वेष है वह दुख स्वरूप है, दुख रूप है। इसलिए कहते हैं द्रव्य उसका वह स्वभाव नहीं है, द्रव्य से विभाव रूप है वह, इसलिए वह द्रव्य से भिन्न है। ये अपेक्षा यहाँ चालू है, लगती है। अब एक दूसरी अपेक्षा इस तरह भी है, द्रव्य का और पर्याय का कौन सा संबंध है? हाँ बहन, अनित्य तादात्म्य संबंध, यानी एक समय पूर्ता क्यों न हो लेकिन वो संबंध कैसा है? तादात्म्य है, इसलिए उसको अभिन्न भी कह सकेंगे, लेकिन वह स्वभाव भाव नहीं है इसलिए उसको द्रव्य से अभिन्न कहा है, द्रव्य से भिन्न कहा है। ख्याल में आया, ये बात यहाँ पर हमने देखी। अब आगे क्या बताते हैं? जीव स्वाधीन चे के पराधीन, इसका उत्तर क्या होगा साहब? हाँ, आपने ऐसा बताया द्रव्य अपेक्षा स्वाधीन है और पर्याय अपेक्षा पराधीन है। अभी हम यही देखते हैं, हम बोले तो आपको बुरा लगे, लगता है ना? बुरा लगता है ना? अरे देखो देखो यहाँ क्या कहते हैं वो देखेंगे। देखो पर्याय अपेक्षाएं जीवती अभिन्न छे, कई आश्रव निवाद चाले छे, अने द्रव्य अपेक्षाएं भिन्न छे, जीव स्वाधीन छे के पराधीन, तेनी तेनो उत्तर समझा विना लोको कहे छे के जीव कथनचित स्वाधीन, एटले द्रव्य अपेक्षाएं स्वाधीन अने कथनचित पराधीन। तो तेनो अर्थ एम नथी, पण पर्याय अपेक्षाएं जीव पोते पराश्रय रूप एटले पराधीन रूप परिणमे छे। हाँ। देखो पोते द्रव्य स्वभावनो आश्रय चूकीने पराश्रय करे तो पर्यायमां पराधीन कहेवाय छे। कहेवाय छे कोई पराधीन करतू नथी, परद्रव्य सन्मुख दृष्टि करे तो पराधीन अने स्वद्रव्य सन्मुख दृष्टि करे तो स्वाधीन एम प्रमाण ज्ञान करवू जोईए। प्रमाण ज्ञान ने सही ज्ञान कहो, इस तरह से हमें होना चाहिए। वस्तु एटले द्रव्य अनेकांत स्वरूप छे तेने समझे तो कर्म रखड़ावे एवी मान्यता रहे नहीं, क्योंकि परद्रव्य इसका कुछ नहीं करता है, फिर भी वो बोले कि नहीं साहब कर्म हमको बहुत सता रहे। आप भी बोलते कि नहीं? पहले बोलते थे, अभी नहीं बोलते? अरे हमारे कर्म का उदय खोटा है इसलिए अच्छी जगह नहीं मिल रही, ऐसा बोल रहे कि नहीं तुम? हाँ नहीं बोलते? बोलते, अच्छा चलो। यहाँ कहते हैं पर मानेंगे तो तकलीफ है, बोलने में कोई तकरार नहीं है। क्या कहते हैं? कर्म रखड़ावे एवी मान्यता रहे नहीं, कर्मे रखड़ाव्यो नथी, पन जीव पोतानी भूलती रखड़ियो छे, पन पर्याय बुद्धि वालो जीव एम माने छे के मने पर रखड़ावे छे। जेने द्रव्य दृष्टि छे तेने द्रव्य दृष्टि मा शुद्धतानी धारा चाली जाय छे, ने जेने पर्याय दृष्टि छे ते जीवनी दृष्टि निमित्त ऊपर चाली जाय छे। अनेकांत स्वरूप ने जाने तो पर्याय बुद्धि छूटी ने स्वभाव तरफ दृष्टि वड़ी गया बिना रहे नहीं। इसलिए क्या कहते हैं आपको, अनेकांत स्वरूप जो है किसका, द्रव्य का कहो या मेरा स्वयं का कहो, क्योंकि मैं भी जीव द्रव्य हूं ना, तो वो मैं समझूंगा तो क्या नक्की होगा कि ना मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं ना परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, क्योंकि ये पर्याय दृष्टि से कहने में आता है कि मैंने पर का कुछ किया या पर मेरा कुछ कर रहा है, लेकिन पर्याय दृष्टि पर्याय बुद्धि छूट जाती है तो अपने जैसा स्वभाव है वह बात ज्ञान में आती है, और स्वभाव के तरफ अपनी दृष्टि कहो श्रद्धा कहो उपयोग कहो लग जाता है और उस जीव के सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अब कहते हैं अगला पेज 39 में हवे, आप पढ़ेंगे क्या? हवे प्रश्नकारना प्रश्नवशात विधि निषेध रूप वचन ना साध भंग थाय छे।
ये यहाँ कहते हैं
जाड़ा टाइप है ना आपका,
ये भावार्थ का है। भावार्थ हमने थोड़ा देख रहा था एक पैराग्राफ, अभी जो उर्वरित भावार्थ है उसको यहाँ देख रहे हैं। हवे प्रश्नकारना प्रश्नवशात, गाथा में ही बात आई थी कि जो सात भंगों के द्वारा श्रद्धा करता है किसके, अनेकांत स्वरूप तत्व का, तो वो सात भंग क्यों, तो लोगों के प्रश्न के वश होकर सात भंग होते हैं, सात उसके उत्तर आते हैं। और दूसरी बात थी लोक व्यवहार के लिए, तो उसमें से कहते हवे प्रश्नकारना प्रश्नवशात, प्रश्नवशात का अर्थ होता है प्रश्न के कारण विधि निषेध रूप वचन ना सात भंग थाय छे। ये वचन की बात है, किसी ने प्रश्न पूछे तो हम जो उत्तर देंगे तो वो वचनात्मक ही होते हैं। आपने प्रश्न पूछा और हमने मन ही मन में उसका उत्तर जान लिया तो वो तो कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं कहलाएगा, ख्याल में आता है ना? वैसे वो हमने उसका उत्तर दिया तो वो वचन रूप होगा। किसी ने प्रश्न पूछा है उसका जो जवाब देने में आता है वो वचन रूप है। इसलिए कहते हैं प्रश्नकारना प्रश्नवशात विधि निषेध रूप, इसका कल हमने अर्थ देखा था, विधि का अर्थ क्या है, अस्ति, और निषेध यानी नास्ति। तो विधि निषेध रूप वचन ना सात भंग
का अर्थ होता है अस्ति,
विधि यानी अस्ति
और निषेध यानी नकारना नास्ति,
ये सात भंग होते हैं वहां पर। तेने स्यात ए पद लगाओ, पद यानी शब्द, ये जो सात उत्तर हो गए सात भंग होते हैं उसके पहले स्यात पद लगाना चाहिए, निस्यात अस्ति स्यात नास्ति ऐसे उसके पहले स्यात पद लगाना चाहिए। स्यात का अर्थ होता है कथनचित, अर्थात किसी अपेक्षा से।
आगे लिखा है
हाँ, द्रव्य की ही है तो स्व के ही अधीन, वो स्वयं परिणमित होता है, परंतु स्वयं निमित्त के अधीन होकर निमित्त के अनुरूप परिणमता है। निमित्त किसको कहते हैं? हम अनुकूल को कहते हैं। और ये द्रव्य क्या हो रहा है उस समय? अनुरूप, वो कुछ करता नहीं है। वैसे द्रव्य भी पर्याय भी कुछ नहीं करते, वो उस अनुरूप सहज परिणमती है। द्रव्य ही स्वयं, क्योंकि वो नए से हम कहेंगे वो उसका करता है, कर्तृ नए से, वो नयों की जब बात आएगी, वो इवन ये जो रागादि का भी जीव करता है ऐसा कहेंगे। क्यों? परिणमन उसने किया है, निमित्त ने नहीं कराया है, तो वहां उसको कर्ता भी कहेंगे। जहां जिस अपेक्षा से बात होती है वहां उस रूप उसको समझना है। प्रवचन सार में तो कहां कहेंगे, आत्मा क्रोध रूप परिणमता है, तो आत्मा स्वयं क्रोध है, वो क्रोधी हुआ ऐसा भी नहीं कहा, वो स्वयं क्रोध है, क्योंकि वो परिणमन रूप ही कोई पूरा द्रव्य उस अवस्था रूप से विद्यमान है। तो जहां जो अपेक्षा होगी ना वहां उसी को ले लेना है। जहां दृष्टि की मुख्यता होती है, सामान्य की मुख्यता होती है, यहां द्रव्य ने वो सामान्य उसको लेना और पर्याय ने विशेष को लेना। तो सामान्य में अभी पर्याय है ही नहीं, तो वो तो उसको हटा दिया, उसको भिन्न कर दिया। तो हम किस दृष्टि से, किस अपेक्षा से द्रव्य को देख रहे हैं उस पर ये सारे कथन निर्भर है। इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है, कभी ऐसा कहते कभी वैसा, वो है क्या, नक्की क्या है, ख्याल में आता है ना। तो जब हम नयों से देखते हैं तो जिसको मुख्य करते हैं, परंतु जो इसको गौण किया है वो भी है द्रव्य में, नए उसी को कहेंगे जो मुख्य रूप से अपने धर्म को कहता है और गौण रूप से अन्य धर्म है ये बताता है, बताता है ना, उसमें वाणी में नहीं आएगा। परंतु जब जब उसने नए ने एक बात बता दी है मुख्य रूप से, तो वहां गौण रूप से अनंत धर्म है ये बात सिद्ध होती है। जब मुख्य रूप से अस्थि की बात कर रहा है नए, तो वो नास्ति धर्म है ये बात वही बता रहा है। बता रहा है कैसे? क्योंकि हमें पता है ना कि ये तो नए है और ये स्यादवाद वाणी है, तो उसमें तो अन्य धर्म वहां गर्भित है, तभी तो एक को मुख्य किया है। यानी ऐसा लिखा है ग्रंथों में, प्रमाण भी पूरी वस्तु को बताता है और नए भी पूरी वस्तु को बताता है। क्यों? उसने एक को मुख्य किया, परंतु गौण धर्मों को वहां सापेक्षता से रखा है, वहां पर निरपेक्ष नहीं वो। तो यहां क्या कहते हैं, जब हम एक भंग कहेंगे, एक नए एक भंग का कथन कर रहा है, तो वहां अन्य भी वहां है ये बात उससे सिद्ध होती है।
अन्य धर्म वहां है,
अन्य धर्म है वहां पर गौण रूप से, उसने उसको उसका नाम नहीं लिया, उसके बारे में उसने कुछ कथन नहीं किया, उसने एक ही के बारे में कथन किया है, परंतु अन्य का इनकार नहीं करता वो। अभी आगे देखेंगे। हवे प्रश्नकारना प्रश्नवशात विधि निषेध रूप वचनना सात भंग थाय छे तेने स्यात ए पद लगाऊ। स्यात एटले कथनचित, आई ना बात, कथनचित का अर्थ वो थोड़ा सा ऐसा नहीं लेना। हाँ, मराठी में कथनचित किंचित वो बात नहीं है, कथनचित है कोई प्रकार, यानी किसी अपेक्षा से, एवा अर्थमा छे। ए वड़े वस्तु ने अनेकांत रूप साध्वी, यानी स्याद पद के द्वारा वस्तु अनेकांत है ये बात यहाँ सिद्ध होती है। जैसे हम बहुत बार वो सीता का उदाहरण देखते हैं, सीता माँ है के बेटी है के बहन है के क्या है, क्या क्या पत्नी है, तो स्यात पत्नी ऐसा कहेंगे। तो किसी अपेक्षा से नहीं, राम की अपेक्षा से वो है, यानी वहां अन्य भी उसके जो मापना जो है, उसके बहनपना वहां है मौजूद। तो स्यात पद लगाने से वस्तु के अनेकांत की सिद्धि होती है, उसको साधना है ने उसको समझना। हाँ। त्या अभी ये सात भंग बता रहे, वस्तु स्यात अस्थि रूप छे, ये पूरे एक अकेले एक धर्म को नहीं बताए, पूरी वस्तु को अस्थि रूप देख रहे हैं, उसके एक धर्म रूप पूरी वस्तु देख रहे हैं। नए अकेले एक धर्म को नहीं बताता, पूरी वस्तु उस रूप बताता है। अभी हमने देखा ना सीता को, याद किया ना, स्यात पत्नी है, तो पूरी सीता उस अपेक्षा से 100% पत्नी दिख रही है। राम की अपेक्षा लगाई तो 100% यानी पूरी वस्तु उस धर्म रूप से, जब हम स्यात अस्थि कहेंगे तो पूरी ही वस्तु अस्थि रूप से दिख रही है। तो कौन सी अपेक्षा लगाई, तो यहां देखते वस्तु स्यात अस्थि रूप छे ए प्रमाणे कोई प्रकार थी, यानी स्यात, यहां जो कोई प्रकार थी लिखा है उसका अर्थ क्या है, स्यात। स्यात यानी अभी कौन सी अपेक्षा लगाई वो भी यहां बता रहे। ये नॉट नेसेसरी कि हर बार आचार्य सभी अपेक्षाओं को बताएंगे, उन्होंने बस लिख दिया तो वहां स्यात पद नहीं भी लगाएंगे, तो वो जैन आचार्य लिख रहे तो वहां स्यात पद है ऐसा समझना। कभी कहेंगे कर्म ने जीव को बांधा है, या जीव ने कर्म को बांधा है, या जीव ने कर्म को उपशमित किया है, तो ये समझना वहां दो द्रव्यों का मिलकर कथन हो रहा है, तो ये निमित्त की अपेक्षा से कथन हो रहा है। जरूरी नहीं हर बार वो कहेंगे नहीं 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 ये निमित्त है, ये निमित्त है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, कोई प्रकार थे इतले स्यात, अभी कौन सी अपेक्षा है वो यहां बता रहे। पोताना द्रव्य क्षेत्र काल भाव थी वस्तु ने अस्तित्व रूप कहे छे, यानी ये जो भंग है वचन है ना, वचन यानी वाणी में जो बताया जा रहा है शब्द के द्वारा, तो कैसे बताते हैं वस्तु को, वस्तु पोताना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसका अर्थ है स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव से वस्तु कैसी है, अस्तित्व रूप है, और ये जो भंग है वो वस्तु को अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व रूप बताता है। वचन की बात है वो बता रहा है, तो वस्तु को किस रूप में बता रहा है, अस्तित्व रूप से बता रहा है। कौन सी अपेक्षा लगाई, हाँ स्वद्रव्य क्षेत्र काल, अकेले द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं चलेगा, हाँ स्व चतुष्टय है वहां पर, ये एक भंग हुआ। अभी दूसरा, वस्तु स्यात नास्तित्व रूप छे, अब ये दूसरा भंग बता रहा है कि वस्तु किसी अपेक्षा से नास्तित्व रूप है, क्या जो है वो भी वही नहीं है, कुछ तो पक्का कहो ना, है क्या नहीं है, तो स्यात लगाया है उसके पीछे। तो स्यात का अर्थ क्या है,
स्यात का अर्थ मालूम हो गया ना आपको, कोई प्रकार की किसी अपेक्षा से,
अभी वो अपेक्षा बता रहे हैं कौन सी है, ये प्रमाणे परना द्रव्य क्षेत्र काल भाव थी नासित्व रूप कहे छे, ये जो दूसरा भंग है वो वस्तु को पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव की अपेक्षा से नास्तित्व रूप कहता है, ये भंग कहने वाला है ना, इसलिए उसको कहता है लिखा। अगर हमें वस्तु के धर्म को बताना है तो वस्तु नास्तित्व रूप है कहेंगे, अब यहां वचन की बात हो रहा है इसलिए कहता है ये शब्द डाला उसने। तीसरा भंग, वस्तु स्यात अस्तित्व नास्तित्व रूप छे, अब ये यहां दो दो का भंग, अस्तित्व नास्तित्व यानी स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा वस्तु अस्तित्व रूप है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वही वस्तु उसी समय नास्तित्व रूप है, ऐसे बताने वाला ये तीसरा भंग। तो वस्तु स्यात अस्तित्व नास्तित्व रूप छे ए प्रमाणे वस्तु मां बन्ने धर्म होय छे अने वचन द्वारा क्रम थी कहेवामां आवे छे, ये क्रम थी शब्द अत्यंत महत्व का है। यहां पर जब हम अस्तित्व नास्तित्व कहते हैं तो हमने क्रम से पहले अस्तित्व का नाम लिया है, उसका स्वरूप बताया, फिर नास्तित्व को बताया, तो हमने क्रम से दोनों ही धर्मों को बताया।
देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जैसा अस्तित्व नाम का गुण है, जैसा नास्तित्व नाम का गुण है, वैसा ये तीसरा गुण है जिसका नाम ही अस्तित्व नास्तित्व है, थर्ड गुण है वो, ख्याल में, इसलिए कहते हैं वो क्रम से कह सकते हैं,
अभी चौथा भंग वस्तु स्यात अवक्तव्य छे। अभी अवक्तव्य ने कहा नहीं जाता, क्या नहीं कहा जाता, पहले तो क्रम से कहा था ना हमने, अब कहते एक साथ जिसको युगपत कहते, युगपत कह नहीं सकते उसको अवक्तव्य कहना, बिल्कुल कह नहीं सकते वो बात यहां नहीं है, कुछ भी उसके बारे में कहे ये तो वक्तव्य हो गया ना उसके बारे में। हाँ देखो वस्तु स्यात अवक्तव्य छे ए प्रमाणे वस्तु मां बनने धर्म एक काल मां होय छे। धर्म तो एक है एट अ टाइम है, वस्तु में दो धर्म अस्ति नास्ति एट अ टाइम है, तो पण वचन द्वारा यानी कहने के लिए एक काल मां ते कहा जाता नथी, एक ही बार एक ही समय में युगपद उनका कथन संभव नहीं है, कोई उसको कथन नहीं कर सकता, जानने में कोई क्रम की जरूरत नहीं है, एट अ टाइम दोनों को जानेगा, परंतु कथन करने में किसी एक को पहले कथन करेंगे हम, इसलिए क्या कहते हैं ते कोई प्रकार थी का अर्थ क्या है स्यात, ते कोई प्रकार थी अवक्तव्य का अर्थ है वो स्यात अवक्तव्य, यानी वस्तु स्यात अवक्तव्य है, क्यों, क्योंकि वो दोनों उसके धर्म एक साथ नहीं कहे जाते। अभी पांचवा वस्तु स्यात अस्ति अवक्तव्य छे। अभी इसमें ऐसा कहना है पहले तो अस्तित्व को बता दिया, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व है, परंतु वो स्वपर का दोनों का जो है ना अस्तित्व नास्तित्व वो एक साथ कह नहीं सकते, हमने जैसे जोड़ी जोड़ी लगाई थी एबीसी में ए बी ए सी बी सी, वैसे भी यहाँ लगा रहे अस्थि को लिया और उसके साथ अवक्तव्य को जोड़ा, उसके पश्चात आगे वाला नास्ति को लेंगे फिर अवक्तव्य को जोड़ देंगे। देखो ये पांचवा नंबर हम पढ़ रहे थे वस्तु स्यात अस्थि अवक्तव्य छे ए प्रमाणे अस्तित्व थी कही जाए छे अने बन्ने धर्म एक काल मां छे तेथी कही जाती नथी, कौन कही जाती नथी वस्तु, वस्तु के बारे में दोनों धर्मों का कथन एक साथ नहीं होता, अस्थि को तो हमने बता दिया अब एक साथ दोनों बताओ नहीं बता सकते, तो तेथी कही जाती नथी, ए रीते वक्तव्य पण छे तथा अवक्तव्य पण छे, तेथी स्यात अस्थि अवक्तव्य छे। क्या कहना चाहते, अस्थि रूप से तो कथन किया परंतु दोनों को एक साथ कथन करना संभव नहीं इसलिए अवक्तव्य, अस्थि रूप से वक्तव्य दोनों का एक साथ अवक्तव्य, इसलिए जो वक्तव्य उसको बता दिया अस्थि और फिर उसके साथ लगा दिया अवक्तव्य, ये बात ख्याल में आती है। हाँ। अब छठा पॉइंट एज प्रमाणे वस्तु स्यात नास्ति अवक्तव्य छे एम कहवी, इस छठा भंग हुआ, नास्तित्व धर्म तो बता दिया परंतु एक साथ अस्तित्व नास्तित्व बताना है तो नहीं कह सकते, इसलिए नास्ति अवक्तव्य बताया। अवे सातवां तथा बन्ने धर्म क्रमपूर्वक कहा जाए पण एक साथ न कहा जाए, अभी एबीसी वाला तीनों का जो रूप लेना, क्रमपूर्वक कही जाए ने अस्ति नास्ति, अब कहेंगे दोनों को एक साथ कहो नहीं कह सकते तो अवक्तव्य, तो अभी यहां तीन का संयोग हुआ अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, माटे वस्तु स्यात अस्ति नास्ति अवक्तव्य छे ए प्रमाणे सातज भंग कोई प्रकार थी संभवे छे। आप कितने भी कॉम्बिनेशन करने की इच्छा करो ये सात से इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, क्योंकि हमने प्रत्येक को सिंगल रखा जिसको एक संयोगी या प्रत्येक भंग कहते हैं, फिर दो दो का संयोग वाला भंग लिया द्विसंयोगी कहते हैं, और तीन ही बातें इसलिए त्रिसंयोगी भी ले लिया, तो इतने ही सात भंग हो सकते हैं। अने एज रीते ए और ज में जरा डिफरेंस गैप चाहिए, एज रीते एकत्व अनेकत्व आदि सामान्य धर्मों ऊपर सात भंग विधि निषेध पूर्वक लगावा। अभी हम देखेंगे सात भंग लगा के किस पर लगाना है, अभी एकत्व और अनेकत्व, तो पहला भंग सुशीला बेन क्या होगा, आपको पता है जैसे अस्ति नास्ति लगाया है,
कोई बात नहीं, अभी हम दूसरे किसी से बुलवाते हैं, बाद में आपको बोलना पड़ेगा हो। हाँ, अभी हमको कौन सा लगाना है, अस्ति नास्ति लगाया, अभी एकत्व अनेकत्व आप लगाने वाले है ना, तो उसके आगे भी हम बहुत सारे धर्म हमने देखे थे कल, उसमें से कोई एक जोड़ी लेते हैं,
नित्यत्व अनित्यत्व,
नित्यत्व और अनित्यत्व कौन लगाना चाहेगा, नित्यत्व और अनित्यत्व आप लगाएंगे,
तेजल बोल
रहा हूँ, सुशीला बहन बहुत दूर बैठी है। हाँ। स्यात नित्यत्व, स्यात अनित्यत्व, स्यात, हाँ बराबर है, स्यात अवक्तव्य, हाँ स्यात नित्यत्व अनित्यत्व, हाँ चौथा नंबर हो गया, हाँ स्यात नित्यत्व अवक्तव्य, हाँ स्यात अनित्यत्व अवक्तव्य, हाँ
शाबाश।
हाँ अब एक मिनट थोड़ा सुनना,
अभी तीसरा चौथा में जो है ना इसमें डिफरेंस,
मुझे और दूसरे किसी को बुलवाना है, दैव साध्यत्व और पौरुष साध्यत्व, ख्याल में अर्थ तो ख्याल में है, यानी दैव साध्यत्व यानी नसीब से होना और पौरुष साध्यत्व यानी पुरुषार्थ से होना, अभी कौन लगाएगा, आप लगाएंगे, ठहरो हम नलिन भाई को बोलना है, नलिन भाई आपको, अच्छा आपको बोलने दो, चलो बड़ा दिल किया उसने, हाँ
हाँ
दैव साध्यत्व,
दैव साध्यत्व,
देखो आप निकालिए पेज नंबर 37, यहाँ ऊपर से चौथी लाइन में है, देखो दैव साध्यत्व पौरुष साध्यत्व, तीसरा और चौथा शब्द मिल गया, उसको देखते हुए बोलना, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, स्यात दैव साध्यत्व, स्यात पौरुष साध्यत्व, बहुत अच्छा, स्यात दैव साध्यत्व पौरुष साध्यत्व, स्यात अवक्तव्य, स्यात दैव साध्यत्व अवक्तव्य, स्यात पौरुष साध्यत्व अवक्तव्य, एक मिनट अभी सातवा भंग कौन सा होगा, बहुत अच्छा, स्यात दैव साध्यत्व पौरुष साध्यत्व, ये ख्याल में आ गया, अवक्तव्य आ गया है, हाँ ये बात ख्याल में आ गई अभी सबको, हाँ अभी और एक बार लगवाएंगे हम, भेदत्व और अभेदत्व, अभेदत्व क्या बोलते, आसान है, अपेक्षत्व अनपेक्षत अनअपेक्षत्व, हाँ लक्ष्मी बेन आप लगाएंगे, स्यात अपेक्षत्व, स्यात अनपेक्षत्व, स्यात अपेक्षत्व अनअपेक्षत्व, स्यात अवक्तव्य, बहुत अच्छा, स्यात अपेक्षत्व स्यात अपेक्षत्व अवक्तव्य, स्यात अनअपेक्षत्व अवक्तव्य, स्यात अपेक्षत्व अनपेक्षत्व और अवक्तव्य, अभी हमारे अनअपेक्षत्व है, ठीक है, अब आखिर में अपना कौन सा रह गया था, एकत्व और अनेकत्व, वो हमारी बहन लगाने वाली है, हाँ बोलो, देखो पेज नंबर 39 पर है वो लास्ट लाइन में, देने स्यात एकत्व, स्यात अनेकत्व, स्यात एकत्व अनेकत्व, स्यात अवक्तव्य, स्यात एकत्व अवक्तव्य, स्यात अनेकत्व अवक्तव्य, बहुत अच्छा, स्यात एकत्व अनेकत्व अवक्तव्य, देखो ये थोड़ा पहला धीरज नहीं होता है, बहुत आसान है।
कॉम्बिनेशन कैसे करना वो ख्याल में आया?
हाँ, वो तो बताया ना, देखो पट्टी रखी हुई है।
कल भी वो एबीसी करके बताए थे ना हमने, आप नहीं थे। देखो यहाँ तीन बातें हैं और वो तीन बातों के हमें भंग यानी कॉम्बिनेशंस करने हैं। तो प्रत्येक को पहले पहले सिंगल रखो, ए बी और सी को, अकेले ए को कहो, अकेले बी को कहो, अकेले सी को कहो। अब दो दो का कॉम्बिनेशन, ए बी, ए सी और बी सी। हमने इसको अस्ति किया, इसको नास्ति किया, इसको अवक्तव्य कहा, तो हर एक को बोल दो। अब ये तीसरे चौथे में उन्होंने अस्ति नास्ति वाला पहले लिया है जोड़ रूप और बाद में अवक्तव्य, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
डिफरेंस
कोई भी पहले
हाँ,
सातों ही भंग
साथ
है,
है ना?
और वो एक साथ है। तो समझने के लिए पहले सिंगल को बता दो, फिर जोड़ी जोड़ी को। यहाँ आपने अभी एकत्व लिखा, यहाँ अनेकत्व और ये अवक्तव्य, तीनों को अलग अलग बता दिया। फिर एकत्व अनेकत्व, एकत्व अवक्तव्य, फिर अनेकत्व अवक्तव्य, और फिर तीनों को एकत्व अनेकत्व अवक्तव्य। ये सात ही भंग हो गए, इससे ज्यादा नहीं हो गए।
ये सात भंग जो अभी आपने समझाए हैं बिल्कुल वो तो याद करने के लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पर जिस क्रम से लिया गया है ना, कैसा, स्यात एकत्व, स्यात अनेकत्व, स्यात एकत्व अनेकत्व,
वो तीसरा
पहला लिया और बाद में वो वक्तव्य को लिया। आपने तीनों सिंगल पहले बताया, लेकिन वो स्यात एकत्व अनेकत्व नाम का तीसरा धर्म भी है,
धर्म है वहाँ।
वो समझने समझ में आवे, लेकिन वो क्या भाई, दोनों एक साथ बोल नहीं सकते। तो अवक्तव्य को हम यहाँ तो क्रम से हम बोल रहे, एकत्व अनेकत्व, इस तरह समझ। ये भंग के पद्धति समझने के लिए इन्होंने जो क्रम फॉलो किया है बहुत अच्छा है, और आप जो बताती हैं वो भी ठीक है, वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर उसका अर्थ समझाना हो किसी को तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। अवक्तव्य यानी क्या, अरे कैसा वक्तव्य, वगैरह वगैरह। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम।
देखो 40 पृष्ठ पर आए हम,
हो ना,
पहली लाइन में जेवी जेवी जहाँ अपेक्षा संभवित हो, संभवित यानी पॉसिबल हो, जहाँ जो लगती हो, जहाँ जो अपेक्षा होती है, त्या तेवी लगावी, यानी जहाँ जो अपेक्षा भी हमने देखी ना अनेक धर्मों पर, देखा एक अनेक देखा, नित्य नित्य, ये सब उसमें जहाँ जो अपेक्षा है वो लगाना चाहिए। वरी एज, ये तो सामान्य धर्मों की बात हुई यहाँ पर। वरी एज प्रमाणे जीवत्व आदि विशेष धर्मों में पण सात सात भंग लगावा। कौन से विशेष धर्म है? जीवत्व अजीवत्व, ये विशेष धर्म बताए। जेम जीव नामनी वस्तु पर स्यात जीवत्व, स्यात अजीवत्व इत्यादि प्रकारे लगावा। क्या कहते हैं, जीव के ऊपर ये पुद्गल में अजीवत्व नहीं लगाना है, ख्याल में है ना? जीव में ही जीवत्व लगाओ और जीव में ही अजीवत्व लगाओ। तो जीव में अजीतव कैसे, अजीवत्व कैसे लगाएंगे? हाँ
नहीं नहीं,
किसकी अपेक्षा
सही है आपका, नास्ति अपेक्षा, लेकिन किस तरह, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा।
हाँ, ये पर जीव की अपेक्षा भी अजीवत्व होगा और पर पुद्गल वगैरह सभी अन्य द्रव्यों की अपेक्षा भी अजीवत्व होगा। यह जीवत्व नाम का एक गुण छोड़कर ये यहाँ जो बात बताई है, एक जीवत्व गुण छोड़ दो तो बाकी जो भी जो शक्तियां हैं उसकी अपेक्षा भी अजीवत्व कहेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे, देखो क्या कहते हैं, ये तो विशेष धर्म की बात चल रही है। ये जो सामान्य धर्म जो बताए हैं वो छह द्रव्यों में होंगे। कौन कौन से देखे, फॉर एग्जाम्पल अस्थि नास्ति, एकत्व अनेकत्व, भेद अभेद, नित्य अनित्य, ये तो सभी द्रव्यों पर घटित हो गए। अब यहाँ हमें जीवत्व अजीवत्व, अभी हम यहाँ जीव द्रव्य पर लगा रहे हैं। त्या अपेक्षा आ प्रमाणे छे के, अपेक्षा समझा रहे जीवत्व अजीवत्व में। पोतानो जीवत्व धर्म पोतानामा छे, माटे जीवत्व छे। जैसे हम सात तत्व सीखते समय जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन, इसे मेरा के ऊपर वजन देते ना, तो वो जीव तत्व, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, वो सारे क्या है, अन्य अजीव तत्व, अब यहाँ अन्य पर अजीव तत्व नहीं लगाना, अपने में ही, पर की अपेक्षा अपने में ही अजीव तत्व ऐसा लेना। देखो पोतानो जीवत्व धर्म पोतानामा छे, माटे जीवत्व छे, पण पर अजीवनो अजीवत्व धर्म तेमा नथी, तो पण अन्य धर्मों ने मुख्य करी कही है ते तेनी अपेक्षाए जीवत्व छे इत्यादि प्रकार थी लगावा। एने अजीवत्वनो पर अजीव की अपेक्षा उसका धर्म इसमें नहीं है तो ये अजीवत्व लेना। जैसे हम पर की अपेक्षा यही नास्ती लगाते थे, यहाँ ये जीव द्रव्य है और पर अजीव द्रव्य है तो उसकी अपेक्षा से ये अजीवत्व है। ये तो पर अजीव की अपेक्षा लगाए। अब कहेंगे तथा जीव अनंत छे, एनी अपेक्षाएं पोतानु जीवत्व पोतानामा छे, अने परनु जीवत्व तेमा नथी। दो अपेक्षा क्या ली, पहले में पहली अपेक्षा ये ली कि पर अजीव की अपेक्षा तो ये जीवत्व है और ये अजीवत्व है, और यहाँ अन्य जीव लिए, सभी में अपना अपना जीवत्व है परंतु पर का जीवत्व इसमें नहीं है या इसका जीवत्व पर में नहीं है, तो परमनु जीवत्व तेमा नथी, तेथी ए अपेक्षाए जीवत्व अजीवत्व छे। यानी पोतानु जीवत्व पोतानामा छे ए जीवत्व, अने परनु जीवत्व तेमा नथी ए अजीवत्व, एम पण साधी शकाय छे। दो अपेक्षा लगाई इत्यादि। अनादि निधन, ये अनादि निधन क्या होता है? निधन यानी मृत्यु, हाँ मरण नाश, तो अनादि निधन यानी क्या?
आपका कहना है जन्म मरण, आपका क्या कहना है?
हाँ
अनादि निधन का अर्थ क्या लेना? हाँ और निधन का अर्थ,
हाँ,
निधन
नहीं,
का अर्थ
नहीं।
क्या लेना? इसका पूरे का अर्थ अनादि से चल रहा है वैसा लेना।
अनादि का अर्थ क्या है? हाँ जिसको बिगिनिंग नहीं है।
हाँ एक मिनट,
हाँ।
सुशीला बेन बताएंगे। हाँ अनादि से है ये हो गया, और मरण का क्या? मरण तक का काल आपने बताया ना, काल बताते हैं। अच्छा हो गया प्रश्न पूछा आपने। हाँ कोई बात नहीं, अभी चौथा नंबर हमारे बापा है।
बहुत अच्छा।
बापा बोलते मैं अनादि अनंत हूँ। देखो देखो सुनो सुनो,
अनादि अनिधन
यानी निधन यानी मरण, तो वो अनादि अनिधन ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए। जैसा आपको मालूम है अगुरु लघुत्व नाम का गुण हमने देखा, वो अगुरु अलघु है, ख्याल में आया? तो दूसरा अ को लोप कर दिया और बताया कि अगुरु लघुत्व गुण, वैसे यहाँ अनादि अनिधन कौन है ऐसा? तुम हो या ये आप हैं और ये नहीं है? हाँ तो वो बोलो नी, एम केम करो छो, सभी द्रव्य अनादि अनंत है।
हा? तो यहाँ क्या कहते हैं देखो,
कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो सीख गए कि मैं अनादि अनंत हूँ, बहुत अच्छा।
ये अनादि अनंत है कौन? सभी द्रव्य। तो इत्यादि अनादि निधन कौन कौन है? अनादि निधन अनंत जीव, अजीव जीव भी अनंत है और अजीव द्रव्य भी अनंत है, तो ये सारे कैसे अनादि अनंत रहने वाले हैं, इसको ये अनादि निधन कहा। यानी ना किसी की उत्पत्ति है ना किसी का कभी नाश होने वाला है, तो ऐसे जो अनंत जीव और अनंत अजीव वस्तु छे ते सर्वमा यानी प्रत्येक मा पोत पोताना द्रव्यत्व पर्यायत्व आदि अनंत धर्म छे। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने द्रव्यत्व और पर्यायत्व धर्म है, एक साथ है। द्रव्यत्व पना भी है कायम रहने स्वरूप, पर्यायत्व भी है जैसे हम नित्य अनित्य पर घटित करते थे, यहाँ द्रव्यत्व पर्यायत्व के रूप में ले लेना। अपना अपना द्रव्यत्व अपना अपना पर्यायत्व, वो अपना अपना है इसलिए उसको विशेष में लिया था। पहले हमने जब देखा पढ़ा था द्रव्यत्व पर्यायत्व, उसको सामान्य रूप भी ले सकते हैं प्रत्येक में है इसलिए, या अपना अपना द्रव्यत्व है इसलिए उसको विशेष में भी ले सकते हैं। आदि अनंत धर्म छे ते सर्व सहित सप्तभंग साधवा, सर्व सहित है वो प्रत्येक जोड़ी के साथ 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 भंग लगाना। कितने ऐसे धर्म अनंत है और प्रत्येक के साथ 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 भंग लगा। वरी तेना स्थूल पर्याय छे ते पन चिरकाल स्थाई अनेक धर्म रूप होय छे। क्या कहते हैं स्थूल पर्याय? एक तो होती है एक एक समय की पर्याय, और एक होती है लंबे काल वही की वही पर्याय चले। जैसे सिद्ध पर्याय किसी के शुरू हो गई कितने काल तक रहेगी? अनंत काल। तो उसको चिरस्थाई या लंबे काल तक चलने वाली ऐसा भी कहेंगे, स्थूल कहेंगे उसको। और संसारी पर्याय वो भी कैसी है? वो संसारी संसारी संसारी, जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक अनादि से वो संसारी ही है। यानी संसारी पर्याय कैसे? अनादि से है, और जो सिद्ध होगा उसकी शांत हो जाएगी यानी अंत हो जाएगा, अनादि शांत। और अभवी जीवों में संसारी पर्याय कैसी होगी? अनादि अनंत, ख्याल है ना। और सिद्ध की पर्याय किसी भी जीव के कैसी होगी? अनादि अनंत होगी कि नहीं होगी? आप क्या कहते हैं? सादी अनंत, क्योंकि सिद्ध पर्याय को बिगिनिंग है। जो जो सिद्ध हुए वो पूर्व अवस्था में संसारी थे और संसार का अभाव करके ही सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? तेना स्थूल पर्याय छे ते पण चिरकाल स्थाई अनेक धर्मरूप होय छे। जेम के
अभी वो चिरकाल स्थाई का अर्थ समझ में
समझ। चिरकाल स्थाई,
चिरकाल यानी बहुत लंबा काल से चल रहा है ऐसा, उसको चिर यानी बहुत पुराने से चलते आया है
लंबा काल। चिरस्थाई यानी
अनेक धर्म रूप, यानी उसमें अनंत धर्म है, अनेक धर्म रूप है।
अभी हमने बात की थी ना संसारी, लंबे काल तक संसारी रहा।
देखो अभी तुम संसारी हो या मुक्त हो, संसारी कब से हो? तो ये अनादिकाल से चिरकाल स्थाई पर्याय चल रही है, समझाणो का है। उसमें भी अनेक धर्म है अलग अलग। हाँ,
अभी उसके दृष्टांत दे रहे हैं जेम के जीव, अभी जीवों में बता रहे ये स्थूल पर्याय कौन सी है या चिरकाल स्थाई पर्याय कौन कौन सी है। तो कहते हैं संसारी और सिद्ध, यानी संसारी जीव और सिद्ध जीव। अब संसारी मां भी, संसारी मां त्रस अने स्थावर, वो लंबे काल तक स्थावर 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 रूप रहेगा तो उसको हम कहेंगे वो चिरस्थाल चिरस्थाई चिरकाल स्थाई। तेमा मनुष्य तिर्यंच आदि, ये जो चार गतियां हम कहते हैं मनुष्य देवनार की तिर्यंच, ये भी उसके लंबे काल तक चलने वाली पर्याय है। स्थूल यानी जैसे हम कहते हैं ना कि
जो सूक्ष्म नहीं है,
ग्रॉस
स्थूल यानी जो ख्याल में आ जाए। सूक्ष्म एक एक समय की पर्याय है ना, हमारे ख्याल में नहीं आती है, लेकिन अभी हम मोक्षा को देख रहे हैं कब से? बचपन से, यानी वो बाय बर्थ। तो वही की वही मोक्षा 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 वो स्थूल पर्याय चल रही है उसकी। जैसा मैं मनुष्य हूँ, कोई तीरंच है कोई नारकी है, वो उसकी स्थूल पर्याय। तो नारकी की स्थूल पर्याय सबसे बड़ी कितनी होगी? तैतीस सागर, बहुत अच्छा। नरक में अच्छी तरह से जाके आई है, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, जाके नहीं?
नहीं, वहाँ पता नहीं था, यहाँ आने पर पता चला है।
नाराज नहीं होने का, दिमाग में फिट करने का तरीका है। हाँ, अरे यह जीव हर पर्याय में हो क्या है, निगोद में भी है, अनंत बार गया मरा वापस आया। घबराना नहीं भाई, ये तो अपनी कहानी है।
देखो हम पढ़ते जीवों में क्या लगा है, संसारी और सिद्ध, संसारी में त्रस्थावर, और उसमें मनुष्य 3 इंच वगैरह। अब पुद्गल में बता रहे, पुद्गल में अपन अणु स्कंद घट पट आदि, ये अणु तो ये तो
अणु के ऊपर अनुसार चाहिए क्या? अणु के ऊपर नहीं चाहिए,
ये अनेक वचन में लिए होंगे।
नहीं नहीं,
अणु अणु स्कंद घटपट आदि। हवे तेमा पण कथनचित वस्तु पण संभवे छे, यानी वो घटको भी वो हम किसी अपेक्षा से वस्तु कहेंगे, क्योंकि उसमें एक परमाणु एक द्रव्य होता है, फिर भी स्कंदों को भी हम वस्तुपना घटित करते हैं, क्योंकि लंबे काल तक चल रही ना वो पर्याय। हाँ, ये घट रूप से वो पड़े है वहां पर, वो स्कंद वहां है, तो उसको भी वस्तु किसी अपेक्षा से कहेंगे। एपन ऊपर प्रमाणे सप्तभंगथी साधवा, यानी उसमें भी जो द्रव्य अपेक्षा और पर्यायत्व वगैरह घटित होता है, वही एज प्रमाणे, पहले तो जीवों की अलग अलग स्थूल पर्याय बताई, पुद्गलों की भी सूक्ष्म और स्थूल पर्याय, परमाणु भी बताए, और लंबे काल तक परमाणु भी रहेगा या कोई उसके स्कंद रहेंगे या घटपट रहेंगे। तो कहते हैं अभी जीव और पुद्गलों के संयोग की बात, पहले अकेले जीव को बताया, अकेले पुद्गल को बताया, अब कहेंगे जीव और पुद्गल के संयोग से। संयोग थी थेला आश्रव बंध संवर निर्जरा पुण्य पाप अने मोक्ष आदि भावमा पण, ये मोक्ष जीव और पुद्गल के संयोग से कैसे हुआ? मोक्ष जो है वो जीव और पुद्गल के संयोग थी सहेला, ऐसा लिखा है ना यहाँ पर? यानी वो संयोग था, उसका वियोग हुआ है ना, वो मोक्ष बताता है। मोक्ष क्या बताता है? पहले संयोग था और अब वो वियोग चल रहा है, इसलिए उसमें सबको ले लिया। हाँ, क्योंकि जब मोक्ष कहते हैं तो किससे छूटा? तो कहेंगे कर्म से छूटा। हाँ, तो बंध में किससे बंधा? तो कर्म से बंधा। तो ये दो द्रव्यों का बंध मोक्ष वगैरह जो है, दो द्रव्यों के संयोग या वियोग रूप से जो कुछ बातें हैं, तो कहते हैं ये जो आदि भावमापन, यानी आश्रव बंध समय निजरा मोक्ष आदि भावमापन, पुण्य पाप भी लेना, बहु धर्मपणानी अपेक्षाएं, यानी उसमें भी अनेक धर्मपना की अपेक्षा आती है, और तथा परस्पर विधि निषेध थी। वो तो जीव है, वो नहीं है जीव और आश्रव, जीव और संवर, ऐसा ले सकते ना हम? नौ तत्वों में भी डिफरेंशिएट कर सकते ना, उनको अलग तत्व बनाया है, जैसे एक जीव और अन्य जीव लिया, अभी वैसे जीव और आश्रव, जीव और बंध, इस तरह से भी घटा सकते हैं। अनेक धर्म रूप कथनचित वस्तुपणु संभवे छे, ए सर्वपण सप्तभंगति साधवा, ये साध भंग तो उसके ऊपर भी लगाने चाहिए। हाँ, जीव को अलग निकालेंगे और आश्रव को अलग निकालेंगे। आगे देखते हैं कथन करके लगाया है कि नहीं लगाया। देखो 48 पेज निकालो। वहां 3 नंबर लिखा है आश्रव, मिला क्या? 48 नंबर पेज अमोल को मिला क्या? नहीं। हाँ, 3 आंकड़ा लिखा, आश्रव लिखा है ना, दया दान भक्ति पूजा आदि ना परिणामों आश्रव छे, यहाँ तो पुण्य रूप परिणाम लिए है, वो भी आश्रव ही है, आश्रव में सभी ले लेना। ते आश्रव आश्रवती छे जीव अजीवादिती नथी, आश्रव जड़कर्म ना कारणे नथी, केम के ते स्वती छे अने परती नथी, आश्रव आश्रव ना कारण से है, वो कर्म के कारण नहीं है। એમ આશ્રમનો નાશ અસ્થિ નાસ્તિ ધર્મ છે. નૈમિત્તિક
કેવલ આશ્રમ મે લગાયો, ઉન્હોને જીવ ઓર આશ્રમ કો નહીં લગાયા.
વો જીવ સે ભી નહીં ઓર અજીવ સે ભી નહીં, એસા લિયે હૈ ના, જીવ અજીવ આદિ થી નથી. દેખો નૈમિત્તિક ની પર્યાય નિમિત્ત થી નથી, પણ પોતાથી છે એમ અનેકાન છે. તો કોઈ અપેક્ષા આશરો પોતાના કારણે છે, ને કોઈ અપેક્ષા એ કર્મના કારણે થાય છે એમ અનેકાંત નથી. નથી કી બાત હૈ, એને સ્વ કે કારણ હૈ પર કે કારણ નહીં હૈ, યે અનેકાંત હોગા. આશરો આશરવ સે હૈ, વો આશરવ જીવ સે નહીં હૈ, એસે ઉસ પર લગાના. આપ આયેગી યે બાતે હરેક તત્વ પર લગા કે દિખાઈએ. અભી હમ ભાવાર્થ પડેંગે ના, બહાર કે ઉપર સભી પ્રવચન આ જાયેંગે. હા અભી ઉન્હોને એક દૃષ્ટાંત દિયા, જેમ એક પુરુષમાં પિતાપણું પુત્રપણું હમને સીતા કે ઉપર ઘટિત ક્યા હૈ, અભી યહાં પુરુષ કે ઉપર વો પિતા ભી હૈ પુત્ર ભી હૈ, મામાપણું ભાણેજપણું કાકાપણું અને ભત્રીજાપણું આદિ ધર્મો હોય છે, તે પોતપોતાની અપેક્ષાએ વિધિ નિષેધ પૂર્વક સાત ભંગ દ્વારા જાણવા. આ નિયમથી જાણવું કે વસ્તુ માત્ર એક ધર્મ અનેક ધર્મ સ્વરૂપ છે, તે સર્વને જે અનેકાંત જાણી શ્રદ્ધાન કરે તથા એ જ પ્રમાણે લોકમાં વ્યવહાર પ્રવર્તાવે તે સમ્યક દૃષ્ટિ છે. ક્યાં કહેતે હૈ, વસ્તુ અનેક ધર્મ સ્વરૂપ હૈ, ઉસકો ઉસ રૂપ જાનકર શ્રદ્ધાન જો કરતા હૈ, એને ઉસકે અનેકાંત સ્વરૂપ કો જાનકર ઉસ અનેકાંત સ્વરૂપ કી જો શ્રદ્ધા કરતા હૈ, ઓર ઉસી પ્રકાર સે લોક મે લોક વ્યવહાર અભી હમને દેખા ને, વો પુત્ર ભી હૈ પિતા ભી હૈ, તો યે લોક વ્યવહાર મે તો હમ બહોત ચતુર હૈ, પરંતુ લોક વ્યવહાર મે ચતુર હૈ ઇસીલિયે સમ્યક દૃષ્ટિ નહીં કહા. તો વસ્તુ કે અનેકાંત સ્વરૂપ કો જો જાનકર શ્રદ્ધાન કરતા હૈ અને એ જ પ્રમાણે લોકમાં વ્યવહાર પ્રવર્તાવે તે સમ્યક દૃષ્ટિ છે. જીવ અજીવ આશ્રવ બંધ પુણ્ય પાપ સંવર નિર્જરા અને મોક્ષ એ નવ પદાર્થ છે, તેને ઉપર પ્રમાણે જ સાત ભંગથી સાધવા. સાધના ચાહીએ કૈસે, જ્ઞાન કે દ્વારા, તેનું સાધન શુત જ્ઞાન પ્રમાણ છે, ક્યોંકિ એ સાતો હી ભંગો કો એક સાથ જાનને વાલા તો જ્ઞાન હૈ, કહેને વાલે મેં તો ક્રમ પડેગા, તો સ્યાત લગા કર હમ ક્રમ સે કહેંગે ઉસકો, તો તેનું સાધન શુત જ્ઞાન પ્રમાણ છે. તેના ભેદ દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક છે. ક્યાં કહેતે હૈ, યે શુત જ્ઞાન જો પ્રમાણ હૈ સાતો કો ઉસને જાન લિયા, સભી ધર્મો કો જાન લિયા હૈ, પૂરી વસ્તુ કો જાના હૈ, તો ઉસકો હમ કહેંગે પ્રમાણ. ઓર ઉસકે ભેદ કરકે અગર હમ જાનતે હૈ કિસી કો મુખ્ય ઓર ગૌણ કરકે, તો ઉસકે દ્રવ્યાર્થિક ઓર પર્યાયાર્થિક યે નયો કે દો નામ હૈ. તો કહેતે તેના ભેદ દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક છે. યહાં નય એસા નામ નહીં લિખા હૈ, પરંતુ યે નયો કે નામ હૈ. કોણ કોણ સે, દ્રવ્યાર્થિક નય ઓર પર્યાયાર્થિક નય. જૈસે હમ કહેતે ને દ્રવ્ય સુ સામાન્ય સ્વરૂપ હૈ ઉસકો દ્રવ્યાર્થિક, ઉસકો જો વિષય કરતા હૈ ઉસકો દ્રવ્યાર્થિક કહેતે હૈ, ઓર જો પર્યાય હૈ જો ભેદ હૈ જો ગુણ કે ભેદ હો ગયે પર્યાયો કે ભેદ હો ગયે પ્રદેશો કે ભેદ હો ગયે કિસી ભી અપેક્ષા હમ વસ્તુ મે ભેદ કરેંગે તો હો જાયેગા પર્યાયાર્થિક નય. અને તેના પણ ભેદ યે અભી હમને સાત નયો કે નામ પહેલે દેખે થે, યાદ હૈ કિસી કો, નૈગમ આદિ. હા લક્ષ્મીબેન બોલો. નૈગમ, હા, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋજુસૂત્ર, શબ્દ, સમવિરૂઢ ઓર એવંભૂત, યે સાત નય હમને બહોત વિસ્તાર સે દેખે થે ઇસી મે. હા તો કહેતે હૈ તેના પણ ભેદ, તેના પણ દ્રવ્યાર્થિક પર્યાર્થિક દોનો કે ભેદ લીએ, તો જો અભી હમને સાત નામ દેખે હૈ उसमें द्रव्यार्थिक नये कौन कौन से हैं? बोलो नली। नैगम संग्रह और व्यवहार, ये क्या है? द्रव्यार्थिक द्रव्य। और ऋजु सूत्र और आगे के तीन जो शब्द नए हैं वो सारे पर्यायार्थिक। तो इन दोनों के ही वो सात भेद हैं, इसलिए यहाँ कहते हैं तेनापन भेद, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ अने एवं भूत नये छे। हमने इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की थी, ये कार्तिकेयनु परीक्षा में ही ये बात आई थी। वही तेनापन उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर यानी भेद के भेद भेद के भेद, इसको कहेंगे उत्तरोत्तर। आगे आगे तेना पर उत्तरोत्तर जेटला वचन ना प्रकार छे तेटला भेद छे। क्या कहते हैं? वाणी में हम जितना उसका कथन कर सकते हैं, वचन के जितने भेद है उतने ही नयों के भेद है। तेने प्रमाण सप्तभंगी तथा नये सप्तभंगी ना विधान द्वारा साधी शकाय छे। ये प्रमाण सप्तभंगी क्या होती है और नये सप्तभंगी क्या होती है? देखो, जैसे वस्तु पर घटित करेंगे ना, वस्तु को अगर कहना है तो वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो तो प्रमाण सप्तभंगी होगी। और उसके किसी एक धर्म को बताना है, बताना तो पूरे वस्तु को ही है, हाँ, तो हम धर्म को मुख्य करके कहेंगे, तो इस धर्म से वस्तु ऐसी ही है, तो वहां स्यात अस्ति ऐसा कहना वो प्रमाण, इतना ही ख्याल रखो, स्यात अस्ति कहेंगे तो वो तो प्रमाण सप्तभंगी होगी। स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, सभी स्यात अस्ति एव शब्द लगाएगा, लगाएंगे हम एव, तो वो नए सप्तभंगी होती है। हाँ, अस्ति ही है यानी उस अपेक्षा से वस्तु ऐसी ही है, क्योंकि हमने एक धर्म को मुख्य किया। तो आप उसमें ज्यादा नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हमने तो सात भंग समझ लिए है, यही बहुत है। परंतु ये दो प्रकार के वहां होते हैं, प्रमाण सप्तभंगी और नये सप्तभंगी। ये आत्मधर्म मैगजीन किस किस के पास आता है? घर में आत्मधर्म आता है, उसमें अभी ये नए प्रमाण गए, तीन महीनों से ये चल रहे हैं प्रमाण सप्तभंगी ने, देखना मिले तो उसमें तो बहुत डीपर में बताया है, यानी शास्त्रों के उद्धरण वगैरह लेके, मगर इतना ही समझे तो भी काफी है, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। अब आगे समय हो गया ना, ये दो वाक्य पढ़ती हूँ। तेनु कथन प्रथम लोक भावनामा करियु छे, ये पहले भी ये बात ये विषय आया था, तथा तेनु विशेष कथन श्री तत्वार सूत्रनी टीका थी जानू। ये तत्वार्थ में तो डबल करना है। ए प्रमाणे प्रमाण नय द्वारा जीवादि पदार्थों ने जानी ने जे श्रद्धान करे ते सम्य दृष्टि थाय छे। अब यहीं रुकते हैं, कल विशेष बात करेंगे।
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकारो सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो।
सुशीला भाई।